الحمد لله وكفى وسلام على عباده اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا سبحانه وتعالى. تو اس والی کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے کتاب السلوک والاحسان پڑھتے ہیں، جس میں تیسرا عنوان آج کل چل رہا ہے شیخ کامل کے ساتھ تعلق. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو اصل کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں اس کتاب السلوک والاحسان کے اندر پہلے ہمیں اخلاق ذمیمہ کے بارے میں بتایا کہ کون کون سے بری خصلتیں ہوتی ہیں انسان میں، برے اخلاق ہوتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈائگنوسس کرنی ہوتی ہے، پھر ان کا جو ہے وہ یعنی علاج کے کچھ طریقے بھی بتائے تھے، اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج، اس کے بعد پھر اخلاق حمیدہ اور ان کو پیدا کرنے کے طریقے یا ان کا حصول کیسے کیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا عنوان اس میں تھا، اس میں ہے شیخ کامل کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم پچھلی دو کلاسز سے پڑھ رہے ہیں. پہلی کلاس میں ہم نے پیری مریدی کا بیان پڑھا. پیری مریدی کہا جاتا ہے اس کو، اگرچہ کہ یہ ٹرم جو ہے وہ بہت ہی ڈروگیٹری اور نگیٹیولی اب استعمال کی جاتی ہے کہ یہ پیری مریدی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی پیر صاحب ہیں وہ گویا کہ گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہ یعنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں یا سر اپنا اوپر کیے ہوئے ہیں، اور باقی جو ان کے مرید ہیں اور مرید آئے ہیں وہ آ کر کے ان کے پیر دبا رہی ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے پتہ نہیں طواف کر رہی ہیں اور ان کو حلوے کھلا رہی ہیں اور یہ اس قسم کے یعنی اپنے ہدیے نچھاور کر رہی ہیں. تو پیر صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے اور مرید مرید آئے جو ہے وہ چاروں طرف چکر لگا رہی ہیں. تو یہ تصور جو ہے وہ ذہن کے اندر آتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت عوام الناس جو ہے نا وہ اسی طرح کی پیری مریدی کے اندر مبتلا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عوام الناس ہے وہ ان کے لیے دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اہل بدعت. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدعتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری مشرکانہ روایات اور طریقوں کے اندر بھی وہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ والی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے یہاں عام طور پر بریلوی حضرات بھی کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ بریلوی حضرات جو ہے وہ کوئی پراپر نام نہیں ہے اس کا. بھائی ایک بندے کا تعلق جو ہے وہ کسی بریلوی نام کی جگہ سے تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ وہ بس جو ہے وہ صرف غلط ہی ہو گیا سارا معاملہ. تو بہرحال اہل بدعت جو ہے یہ پراپر نام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس قسم کی پیری بنیتی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر ایسی جو ایسے ان کی جو زندگی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ گناہوں کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے جو اڈے ہوتے ہیں، جو ان کو سو کال خانقاہیں ہوئیں یا جو بھی اس کو یہ کہتے ہیں، مزار ہوئے، خانقاہیں ہوئیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ پھر یعنی بہت ہی یعنی قبیح قسم کے فیل ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنی یا کیا کیا کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز عام ہے، بہت زیادہ ہے، برے صغیر کے اندر بھی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف برے صغیر کے اندر ہے، عرب ملکوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. نہیں، عرب ملکوں کے اندر بھی ہے، ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر تو یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایون کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر بھی ہے یہ سب کچھ، اگر جگہ چھپ چھپ کر کے ہوتا ہے. خیر اب چھپ کے بھی نہیں ہوتا، پہلے چھپ کے ہوتا تھا. تو برے صغیر میں بھی بہت زیادہ ہے اور دوسری جگہوں پر بھی یہ بہت زیادہ ہے، شام، عراق وغیرہ کے علاقوں کے اندر بھی ہے، مصر کے اندر بھی ہے، اور افریقہ کے اندر بھی یقیناً ہے سب کچھ. اینی ویز، تو शैतान ने जाहिर है इस वाले लाइन को जो है ना वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है गुमराही फैलाने के अंदर। लेकिन उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये लाइन थी ही शैतान के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जो जो रुकावट थी ना वो यही लाइन थी दीन की, यही शोभा था दीन का। क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो बाकायदा शैतान का मद्दे मुकाबिल शेख, वो शैतान के मद्दे मुकाबिल काम कर रहा होता है कि वो लोगों को जो है वो अल्लाह ताला से जोड़ने का काम कर रहा होता है, उनकी गलतियों की इसलाह का काम कर रहा होता है। तो शैतान को जो है वो सबसे ज्यादा जो थ्रेट है, सबसे ज्यादा जो जो उसको यानी जो रुकावट अपने रास्ते के अंदर मिलती है ना वो शेख की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो अब जाहिर है इस लाइन को उसने जो है वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ करके इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करी है, सबसे ज्यादा मेहनत करी है कि लोग जो है ना वो इसके बारे में गलत फहमी का शिकार हों और इस यानी लोगों को इस तरीके से जो है वो सबसे ज्यादा गुमराह भी किया जाए, और बाकी जो लोग हैं वो उनके दिनों के अंदर जो है ना वो इस वाले शोबे शोबे दीन के लिए जो है ना वो गलत फहमियां और बदगुमानियां डाल दी जाएं ताकि वो इससे दूर रहें, ताकि वो शेख के नाम से ही जो है ना वो बिदक जाएं और डर जाएं और खौफ खाएं और वो दूर ही रहें। क्योंकि उसको ये बात पता है कि फिर मेरे रास्ते की रुकावट जो है ना वो दूर हो जाएगी और फिर मैं खुल करके लोगों को दूसरे तरीकों से गुमराह करता रहूंगा। तो इट ऑल मेक सेंस, इसमें कोई ऐसी मुश्किल समझ में आने वाली बात नहीं है कि भाई ये पीरी मुरीदी की लाइन जो है वो सबसे ज्यादा गुमराही का सबब क्यों बन रही है, और दूसरे लोग जो कि इसके अंदर दाखिल नहीं है वो सबसे ज्यादा इसके खिलाफ क्यों है। इसकी बहुत आसान सी सादा सी वजूहात है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। तो पीरी मुरीदी का बयान पढ़ लिया था, शेख कामिल की अलामत पढ़नी शुरू कर दी थी जिनमें से कि हम पांचवी अलामत तक पढ़ चुके थे पिछली क्लास के अंदर। फिर हम छठी अलामत आज पढ़ना शुरू करते हैं कि उसकी तालीम में ये असर हो, यानी शेख कामिल की अलामात। अच्छा, शेख कामिल का मफहूम जो समझाया था वो उम्मीद है कि आपको याद होगा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं होता, हर लिहाज से जो है वो कामिल होता है, 100% होता है, परफेक्ट होता है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसकी मिसाल हमने मनहूस गेम क्रिकेट के से आपको दी थी, उस मनहूस तरीन गेम क्रिकेट के जरिए से हमने आपको मिसाल दी थी जिसके अंदर हम सारी मुब्तला भी हैं, मोहब्बत इश्क और बल्कि हर किस्म की बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं, और फतवा भी जो है वो उसके लिए दे चुके हैं कि हाँ जी कोई मसला नहीं होता क्रिकेट के अंदर। बहरहाल आप समझें ना समझें मसला तो है क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो क्रिकेट जैसे मनहूस गेम से जो है ना वो आपको हमने मिसाल दी थी कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर जो है ना वो ऑलराउंडर एक प्लेयर होता है ना, ऑलराउंडर जिसके अंदर के ये भी सिफात ये भी मौजूद होता है वो भी मौजूद होता है और एक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो शेख कामिल का भी यही मतलब है, शेख कामिल का भी यही मतलब है कि वो जो है वो एक ऑलराउंडर किस्म की शख्सियत होती है। इसको ऊपर से जो उसके जो असातिज़ा और मशाइख हैं उनकी तरफ से उसको एतमाद हासिल होता है और इसके अपने शेख ने इसको इस काम के ऊपर मामूर किया होता है। ठीक है, इसके काम के ऊपर मामूर यानी हुक्म दिया होता है कि भाई आप जो है वो दूसरों की इसलाह का काम करें। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो काम शुरू करता है तो इसके अंदर जो है वो ये क्वालिटीज होनी लाजमी होती हैं, यानी कि शरीयत के जरूरी मसाइल को जानता हो, महज पेशे के लिए जो है वो पीरी मुरीदी ना करता हो, अगरचे कि अगर इसको कहीं से हदीये मिल जाते हैं तो वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए उसको कबूल भी कर लेता हो, जाहिर शराइत के साथ होता है सारा मामला, लेकिन इसने इसको पेशा ना बनाया कि जी इसका जो है ना वो यानी कमाई के लिए ही ये वाला काम करता है। इसको जो है वो नेक लोग अच्छा कहते हों और इसके अकायद जो है वो अहले सुन्ना वल जमात के मुताबिक हों। ठीक है, अहले सुन्ना वल जमात के मुताबिक यानी सहाबा कराम के जैसे अकायद थे तो इसके अकायद भी जो है वो सहाबा कराम के अकायद के मुताबिक हों। आजकल के दौर के अंदर सहाबा कराम के अकायद जो हमें सबसे ज्यादा कामिल फॉर्म में मिलते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत दलाइल के साथ मुकम्मल तरीके से मिलते हैं, वो उलमाए देवबंद में मिलते हैं। उलमाए दियोबंद के अंदर सहाबा किराम वाले अकायद, और बेसिकली अकायद ही असल चीज है, ठीक है। तो वो जो है वो उलमाए दियोबंद में मिलते हैं। तो इस वजह से आज के दौर में खुसूसन अगर किसी शेर का जो ताल्लुक है वो बड़े सगीर पाक को हिंद के इलाके के साथ है, बांग्लादेश के इलाके के साथ है, तो उसके लिए बड़ी आसानी है कि उसको देख लिया जाए कि ये उलमाए दियोबंद के मसलक के ऊपर कारबंद है या नहीं। इतना चेक कर लेना जो है वो काफी हो जाता है। अब जाहिर वो अगर फलस्तीन से ताल्लुक रखते हो वो शेख जो है, या वो जो है वो मिस्र से ताल्लुक रखते हो, या जो है वो लीबिया से ताल्लुक रखते हो, तो वहां पर तो क्योंकि दियोबंदी मदारिस जो है वहां पर नहीं है, ठीक है, या एक आदि कोई ऐसा होगा जो कि दियोबंदी मसले पर काम कर रहा होगा, तो इस वजह से अब लीबिया का कोई जो शेख है ना उसमें देखना अगर चाहिए दियोबंदी है कि नहीं है, तो ये बेवकूफी की बात है, वहां पे आपको दियोबंदी नहीं मिलेगी। वहां पे फिर आपको जाहिर सी बात है तफसीलात में खुद जाना पड़ेगा, खुद चेक करना पड़ेगा कि भाई इनके अकायद क्या है। लेकिन जो बाकी इलाकों के अंदर जहाँ पर इवन जहाँ पर यानी वो इलाके जो कि एशिया के इलाके नहीं भी है ना, जैसे साउथ अफ्रीका है और यूरोप के यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बरेसगीर पाक व हिंद बांग्लादेश के लोग वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुंतकिल हो गए। तो अगर वहां पर भी कोई जिसको देसी कहते हैं, राइट, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी को एक टर्म देसी कहा जाता है, तो अगर कोई देसी शेख हैं तो उनमें बस ये देख लिया जाए कि वो उलमाए दियोबंद के मसलक के ऊपर हैं या नहीं, बस इतना जो है वो काफी हो जाता है उनके सही और लकीदा होने या ना होने का फैसला करने के लिए। अल्लाह ताला ने हम कमजोरों के लिए आसानी कर दी है, वरना तो हमें तो अकायद के अलग भी नहीं पता हम कैसे जाकर के जो है वो मशाइख में तलाश करते कि अच्छा किसका अकीदा सही है किसका अकीदा सही नहीं है। बहरहाल किसी को कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो वो चार पॉइंटों के ऊपर लिख करके सवाल पूछ सकते हैं। अब छठा जो पॉइंट है शेख कामिल की अलामत में से, वो फरमाते हैं कि इसकी तालीम में ये असर हो कि दीन की मोहब्बत और शौक पैदा हो जाए, ठीक है, दीन की मोहब्बत और शौक पैदा हो जाए। इसके लिए जो है वो मछली की मिसाल हमारे मशायख देते कि मछली के अंदर जो है ना वो पानी की मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है यानी एक तमसीली एतबार से, एक तमसीली तरीके से देते हैं, यानी एक 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 हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब फिजिकली जो है वो पानी की मोहब्बत नहीं होगी उसके अंदर, यानी साइंटिफिकली अगर आप देखें तो भाई मछली जो है ना उसके अंदर गिल्स होते हैं, तो उसको जो है वो पानी से ही ऑक्सीजन मिलती है, वो बाहर निकल करके अपनी ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकती, ठीक है। तो भाई एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है मछली के पानी के साथ लगाव की, लेकिन एक मोहब्बत वाली एक्सप्लेनेशन या तमसीली एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई मछली को अगर आप पानी से निकाल दें तो वो तड़पना शुरू हो जाती है, तड़पना शुरू हो जाती है, राइट। किस लिए तड़पती है? वापस पानी में जाने के लिए तड़पती है, इतनी शदीद उसके अंदर मोहब्बत है कि अगर आप उसको ज्यादा देर तक पानी से बाहर छोड़ दें तो वो मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो अब मोहब्बत तो ऐसी चीज होती है कि जब महबूब से जुदा कर दिया जाए तो तड़पना शुरू हो जाए और बिलाखिर जो है वो जान दे दे, तो मछली जो है वो ऐसे ही करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मजीद क्या कि अगर आप मछली को जो है ना वो पका कर खाएं, ठीक है, तो जो मछली को खाता है ना तो उसको भी पानी की तलब लग जाती है ना, यानी मछली खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है दूसरे खानों के मुकाबले। तो मछली में इतनी मोहब्बत होती है कि उसको खाने वाला जो है उसमें भी मोहब्बत वो मुंतकिल कर देती है पानी की, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमारे अंदर मोहब्बत होती है ना तो फिर ये मोहब्बत उन लोगों में भी मुंतकिल होती है जो कि हमारे करीब आते हैं, अच्छी नीयत के साथ करीब आते हैं, अच्छी नीयत से जो करीब आते हैं तो उनमें भी ये मोहब्बत मुंतकिल हो जाती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, ठीक है। अच्छी नीयत की शर्त इसके अंदर क्यों लगाई? क्योंकि अगर अच्छी नीयत ना हो, सही नीयत ना हो, ठीक है, तो फिर नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जितनी अल्लाह की मोहब्बत थी उतनी तो किसी और इंसान में हो ही नहीं सकती। महबूब इलाही थे राइट, और मोहब्बत के सबसे आला मकाम के ऊपर थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कितने लोग आते थे जो कि अल्लाह की मोहब्बत से महरूम ही वापस जाते थे, ठीक है, वो मुनाफिकीन हो, मुशरिकीन हो, यहूद हो, नसारा हो, ठीक है ना, थे तो वो अल्लाह के बंदे ही सारे के सारे ना, थे तो वो सारे के सारे ही इंसान, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास आ करके बैठ करके, बल्कि मुनाफिकीन तो लंबा लंबा बैठते थे और मस्जिद नबवी में आ करके बैठते थे, जिसके लिए आजकल हम एक दूसरे को ठुड्डे मार करके जा करके ना वहां पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, रियाजुल जन्ना में कोई पता नहीं, वहां पे जा करके जो है ना वो हमें पक्की जन्नत मिल जाएगी। इस वजह से उसको मारा, इसको चुटकी काटी, उसको जो है ना वो धक्के दिए, उसको जो है वो आगे पीछे छोड़ा, और जो है वो रियाजुल जन्ना में पहुंच गए। वो भाई वो रियाजुल जन्ना में ही आके बैठते थे, मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई और दूसरे मुनाफिक वहीं पे आकर के बैठते थे, वहीं पे नबी अलैहि और हम तो नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में वैसे हो भी नहीं सकते, आप सब दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल हो चुके हैं और जमीन के नीचे हैं। उस वक्त तो नबी अलैहिस्सलाम जमीन के ऊपर होते थे और सामने नजरों के सामने होते थे, लेकिन उनको फायदा नहीं होता था, ठीक है। तो इस शर्त के साथ इस बात को देखा जाए तो बात आसानी से समझ में आ जाती है कि उसके अंदर ये उसकी तालीम में ये असर हो कि दीन की मोहब्बत और शौक पैदा हो जाए, जैसे कि सहाबा किराम के दरमियान के अंदर जो है वो दीन की मोहब्बत और शौक पैदा हुआ था। अच्छा, इसके बाद फिर मजीद यानी एक और पॉसिबल बदगुमानी या पॉसिबल गलतफहमी का भी हजरत ने यहाँ पे जवाब दे दिया कि 100% लोगों के अंदर जो है ना वो शौक आपको नजर आए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जितने लोग उनके पास आ रहे हैं बेशक उनकी नीयत अच्छी भी है, उनकी नीयत सही भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर आपको एक लेवल का शौक और एक लेवल की जो है ना वो दीन की मोहब्बत नजर आए, ठीक है। तो उसके ऊपर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि ये बात उसके मुरीदों का हाल देखने से मालूम हो जाएगी। अगर 10 मुरीदों में पांच पांच छह मुरीद भी अच्छे हों तो समझो कि ये पीर तासीर वाला है, इसकी बात में असर है, और एक आध मुरीद के बुरे होने से शुभा मत करो, ठीक है। एक आध, अच्छा, पांच छह के बाद एक आध तो नहीं बचते, चार बचते हैं, 10 में से 6 को निकालते हैं तो चार बचते हैं ना, तो चार नहीं कहा बल्कि एक आध कहा, क्योंकि एक आध जो है ना ये मुहावरा है, यानी चंद एक, ठीक है, ये मुहावरा है, तो मुहावरतन एक आध कह दिया जाता है ना, तो एग्जैक्टली 5-6 मुराद है कि अब आप जो है ना वो हर 10 मुरीद को उठाएं है ना अपने सामने बिठाएं और कहें कि ऐसा 10 में से जो है ना वो 5 अच्छे हैं, 6 अच्छे हैं कि नहीं है, और जो है ना वो एक और डेढ़ है, डेढ़ मुरीद जो है वो बुरा है तो फिर ठीक है, 1.5 से जो है ना वो अगर 1.25 मुरीद हो गए तो फिर वो ठीक नहीं है, नहीं, ये बात समझाने के लिए बात कही जा रही है, इस तरह एग्जैक्टली इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती है, ठीक है, कि भाई यानी जो अक्सर लोग हैं वो दीन के ऊपर चलने वाले हैं, दीन पे अच्छा चलने की कोशिश करने वाले हैं, जाहिरी तौर पर जो है वो शरीयत सुन्नत की पाबंदी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बस इतना देख करके जो है ना वो समझ लो कि ये पीर तासीर वाला है, और एक आध मुरीद के बुरे होने से शुभा मत करो, ठीक है। तो हम तो चूंकि हमारी मिसाल तो गंदी मक्खी वाली होती है ना, कि जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लजीज लजीज और साफ सुथरी खाने की चीजें पड़ी हुई होंगी और कोने में एक जो है ना वो कोई बुरी चीज पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो हम जो है ना वो गंदी मक्खी की क्या मिसाल होती है कि वो सारी अच्छी चीजों को छोड़ करके जो है ना वो उस एक गंदी चीज के ऊपर जा करके बैठे, ठीक है। तो इसी तरह से एक आम इंसान की तबीयत होती है इसी तरीके से कि बहुत सारी अच्छी चीजों को छोड़ करके जो है ना वो जो एक गलत बात है ना वो उसको पिक कर लेता है, ठीक है। तो करना यानी ये एक इंसान की तबीयत के अंदर है, इसमें एक्चुअली कोई बुराई भी नहीं है अगर इसको नेक नियति के साथ किया जाए कि भाई इसलाह हो जाएगी तो वो एक गलत बात भी सही हो जाएगी, इस नियत से अगर किया जाए तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है वो जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों के जो है वो अप्रिसिएशन भी हो जाए साथ साथ, तो फिर और भी अच्छा मामला हो जाता है। खैर, तो उस एक आध है ना वो मुरीद के बुरे होने से शुभा मत करो। और तुमने जो सुना होगा कि बुजुर्गों में तासीर होती है, वो तासीर यही है। तासीर का मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ कह देते हैं उसी तरह हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये खुदाई सिफत है, ये पीर के अंदर ये वाली सिफत नहीं होती, ठीक है ना, और होनी भी नहीं चाहिए कि वो जो कुछ कह दे वैसा ही हो जाए। अगर आपको बजायर ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो कुछ कह रहा है वैसा ही हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ शोबेबाजी हो रही है या यहाँ पर कुछ जादू टोना हो रहा है, ठीक है। कोई उन्होंने ना आपके आपके ऊपर जो है वो कुछ पड़ बड़ करके जो है ना वो कोई असर कर दिया है, या आपने किसी कोई असर कोई कोई अमल करके जो है ना वो आपकी आंखों के ऊपर ऐसा असर कर दिया है कि आपको जो है ना वो अब चीजों की हकीकत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आपको एक धोखा और एक शराब नजर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीर साहब जो है ना वो जो कहते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपको होता हुआ नजर आ रहा है तो ये बड़ा गलत, ये बड़ी गलत इंडिकेशन है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दुनिया का अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, ऐसा नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं होता था, तो ये आज के पीर साहब के साथ ऐसा कैसे होना शुरू हो गया कि वो जो कह देते हैं वैसे ही हो जाते हैं, तो समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो तासीर का ये मतलब ही नहीं है, तो डोंट इवन ट्राई टू लुक फॉर इट, ठीक है, कि इनके कहने के मुताबिक होता है कि इनके कहने के मुताबिक नहीं होता है। भाई ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है नेकी और बदी का। और उसकी मजीद तफसील ये मिसाल के तौर पर कि उन्होंने एक फूंक मारी और से बीमारी दूर हो गई, ठीक है, एकदम कर दिया, और जो है ना वो सारे लोग जो है वो अपनी बीमारियां दूर करवा के वहां से जा रहे हैं, या जिस काम के लिए तावीज देते हैं वो काम जो है वो मर्जी के मुताबिक हो जाता है, या ऐसी तवज्जो डालते हैं कि आदमी पर वजतारी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा मुराकबा करवाया कि वो तो झूमना शुरू हो गया, उसने अपने कंधे उचकाने शुरू कर दिए, या जो है वो उठ करके जो है ना वो धमाल डालना शुरू कर दिया, और हक अल्लाह हक हु और इस किस्म की उसके ऊपर कैफियत तारी हो गई, ठीक है ना। ये नहीं है तासीर। लेकिन जो जो अहले बिदत हैं उनके दरमियान ऐसे बड़े तमाशे मिलेंगे, बड़े इस किस्म के जो है ना वो चीजें चल रही हैं, हत्ता के यानी इसके ऊपर बड़ी रिपोर्टें भी, बड़ी वीडियोज भी, बड़ी सारी चीजें मौजूद है ना, कि वो पीर साहब आए, उन्होंने तवज्जो डाली और फिर मुरीद साहब ने नाचना शुरू कर दिया उसके बाद, या उल्टा लटकना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या उल्टे से दिया, ऐसी ऐसी जितना ज्यादा वो उल्टा हरकत करेगा ना मुरीद साहब, तो उतना ज्यादा पीर को जो है ना वो बुजुर्ग समझते हैं और पहुंचा हुआ समझते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तासीर का मतलब ये है कि वो तवज्जो डालें और उसके ऊपर वजदारी हो जाए। इन तासीरों से कभी धोखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट था शेख कामिल की अलामत में से। फिर शेख कामिल की सातवीं अलामत लिखते हैं कि उस पीर में ये बात हो कि दीन दीन की नसीहत करने में मुरीदों का लिहाज ना करता, दीन की नसीहत करने में मुरीदों का लिहाज ना करता हो, हर खिलाफ शरा और नामुनासिब काम से रोक देता, ठीक है। जब कोई ऐसा पीर मिल जाए तो अच्छी नीयत से, यानी खालिस इस्लाह बातिन की नीयत से ताल्लुक कायम करना चाहिए। किसकी इस्लाह बातिन? किसी दूसरे की इस्लाह बातिन की नीयत से नहीं, बल्कि अपने इस्लाह बातिन की नीयत से ताल्लुक कायम करना चाहिए। अगर मजकूरा बाला औसाफ का हामिल कोई शेख मुयस्सर ना हो तो मुरीद बनना फर्ज तो है नहीं, अलबत्ता दीन की राह पर चलना फर्ज है, मुरीद हुए बगैर भी इस राह पर चलते रहो, ठीक है। यानी ये नहीं कहा कि पीर नहीं मिलता तो जो है ना वो पीर के साथ बैत करना तो फर्ज नहीं है कि भाई जब जैसा भी मिले उसके साथ जो है वो आप बैत कर लें, ठीक है, लेकिन दीन पर चलना जरूर फर्ज है, तो आप दीन पर चलते रहो, ठीक है। तो बात हजरत की जो है ना वो घूम घुमा करके वहीं पे वापस आ जाती है कि भाई दीन पे चलना फर्ज है, चलते रहो, तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके बात समझ में आ जाएगी कि भाई अगर नहीं चल पा रहे हो तो फिर तुम्हें जो है वो शेख को तलाश करना होगा, ठीक है। तलाश करो, नहीं मिल रहा तो ये नहीं है कि जो मिल रहा है उसे बैत करो, बल्कि तलाश करो, ठीक है। जैसे कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीरे कामिल तलाश किए थे, ठीक है ना। और जितना जो है ना वो करते गए अजीब अजीब उनको हालात से साबित पड़ता गया, लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनको नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। इसके अंदर उनकी जिंदगी के 350 साल निकल गए, 300 साल या 350 साल निकल गए, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल आखिर उनको मंजिल के ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो तलाश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह ताला किसी को पहले ही मौत दे दे तो भाई कम से कम इतना तो होगा ना कि हाँ ये अपनी इसलाह की खातिर जो है वो पीर को तलाश कर रहा, ठीक है, यानी संजीदा था और चाहता था कि इसकी इसलाह हो जाए, खुद नहीं कर पा रहा था, खुद जो है वो शैतान के बहकावों से और धमकों से नहीं बच पा रहा था, तो उसके लिए जो है वो पीर कामिल तलाश कर रहा था। तो चलो मेरे बंदे ने कोशिश तो करी ना, अब मेरी ये मेरा फैसला था, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा फैसला था कि इसको दुनिया के अंदर जो है ना वो उस कोशिश के अंदर कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन उसकी कोशिश को देखते हुए फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उसको जो है वो उसको मगफिरत फरमा देते हैं, ठीक है। हमारा काम है कोशिश करना और रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना ये अलामत है कि ये जो हजरत हमारे हजरत फरमाते हैं, बल्कि हमारे हजरत अपने हजरत को कोट करते हैं कि पीर जो है ना वो चुप शाह नहीं होना चाहिए। चुप शाह, चुप शाह का मतलब क्या होता है कि जी मुरीद साहब कुछ भी करते रहे इन्होंने जो है वो चुप रहना, ठीक है। तो या तो ये इस वजह से चुप रह रहे हैं कि भाई अगर किसी को डांटेंगे या किसी की इसलाह करेंगे, किसी को रोक टोक करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो नाराजगी से बचने की खातिर कि मुरीद नाराज ना हो जाए, और जो है वो जब नाराज हो जाएंगे जाहिर है तो फिर उसके बाद वो छट जाएंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो है वो मसला पड़ जाएगा कि भाई इनके पास तो मुरीद ही नहीं आते, इनके पास तो जो है वो लोगों का रश ही नहीं लगता। तो सब में मकबूल होने के लिए ये खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते किसी को, ठीक है। तो चुप शाह होने की एक वजह ये बनती है, हर दिल अजीजी का शौक, भीड़ लगाने का शौक, ठीक है ना, पॉपुलैरिटी का शौक, तो इस वजह से कुछ नहीं कहते किसी को, तो चुप शाह है ये। और दूसरी वजह क्या बनती है कि जो मुरीद साहब है ना उन्होंने हलवा इतना खिलाया हुआ होता है कि वो हलवा जो है वो पीर साहब के होठों को चिपक जाता है और उस वजह से वो होठ जो है ना वो बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। हलवा खिलाने का मतलब क्या है, बाकायदा ऐसे नहीं है कि हलवे के अंदर गोंद लगा करके उनके होठों को चिपका दिया जाता है, बल्कि हदिया दिया मुरीद साहब ने, अब जो है ना वो पीर साहब जो है वो ऐसे मुरीद को जो कि हदिये देता हो वो उनके खिलाफ अगर कोई बात कर दी तो फिर तो हदिये बंद हो जाएंगे, वो नाराज होकर चले गए तो फिर हदिये कहाँ से मिलेंगे, काम कैसे चलेगा फिर उसके बाद। तो इस वजह से चुपचाप बन के बैठे हैं, कुछ नहीं कहते भाई, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो पीर साहब जो है ना उनका कोई फायदा नहीं है कि जो के। और तीसरा काम ये होता है कि जी वो कहते कुछ नहीं है, कोई इसलाह वसलाह कोई नहीं करनी उन्होंने, बस जो है वो वजीफे बता देते हैं, है ना, ये पढ़ लेना और वो फलाना वाला अमल कर लेना, और यानी वजीफों टाइप का अमल, ये नहीं कि फराइज को पूरे करना, ये नहीं कहते, वो गुनाहों से बचो, नहीं ये नहीं कहते, बल्कि नफलों और वजीफों के ऊपर जो है वो मुरीदों को चलाते रहते हैं, चलो भैया ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, वो कर लोगे तो वो मिल जाएगा, ऐसे कर लोगे तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो अपनी दुकान चलाते रहते हैं, लोगों का रश लगा रहता है, अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को फिर ऐसे पीरों के पास जो है ना वो और भेजते हैं ताकि इनका जो है ना वो और गुमराही के अंदर जाए, ना तो पीर साहब की कोई नियत है लोगों की इसलाह करने की और ना जो है वो मुरीद साहब की नियत है अपनी इसलाह करवाने की, तो फिर ऐसे लोग जो है ना फिर वो एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट होते हैं, बदनीयत लोग जो है ना फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, कि जिनकी नीयत खराब होती है ना वो बर्ड्स ऑफ ए फेदर यानी वो एक ही तरह की बर्ड्स होती हैं, वो एक साथ ही उठती हैं, तो ऐसे लोगों का फिर रश लग जाता है ऐसे खानकाओं के ऊपर जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ठीक है। क्या लिखा किसी ने यहाँ पर कि एक गांव है वहां खतीब सरकार है, खतीब सरकार वो आंखों से मरीज की जंजीरें निकालते हैं, अच्छा आंखों से मरीज की आंखों से जंजीरें निकालते हैं और पेट में से मुंह के जरिए कील निकालते हैं। अच्छा, तो उनको कोई जादू वादू का अमल जो है उनको कहीं से सीखा हुआ होगा कि वो पेट में से जो है वो मुरीद के जंजीर निकलते हुए, सॉरी, पेट में से कील निकलते हुए लोगों को नजर आती होगी, और मरीज के जो है ना वो आंखों में से जंजीर निकलती हुई देखने वालों को नजर आती होगी। तो भाई ये तो जादू कहलाते हैं ना, देखने वालों की आंखों के ऊपर इस तरीके से जादू कर दिया जाता है कि उनको जो है ना वो जो नहीं होता वो नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही जादू जो है, यही वाला जादू जो है वो मूसा अलैहि सलाम का जब मुकाबला हुआ था फिरौन के जादूगर के साथ, तो उन जादूगरों ने एग्जैक्टली यही काम किया, ठीक है, कि लोगों की निगाहों के ऊपर जादू कर दिया। अब असल में वो रस्सियां जो थी वो सांप नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो सबको सांप लगना शुरू हो गई थी, हत्ता के फिरौन को भी वो सांप लगना शुरू हो गई थी, हत्ता के हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो सांप दिखना शुरू हो गया। यानी ये जो मेस्मराइजेशन की जाती है ना, ये नबियों की आंखों के ऊपर भी हो जाती है, नबियों की आंखों के ऊपर भी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है ना वो किसी के पेट में से जो है ना वो कील निकाल रहे हैं, आंखों में से जंजीर निकाल रहे हैं, भाई देखने वालों को लग रहा है कि जंजीर निकल रही है, वो असल में कोई जंजीर नहीं निकल रही है, वो मेस्मराइज किया हुआ है, ठीक है। बहरहाल फिर इन्होंने आगे लिखा है कि मीडिया ने एक्सपोज किया कि पीर साहब नमाज ही नहीं पढ़ते और औरतों से ताल्लुकात भी हैं उनके, ठीक है। तो गुनाह कबीरा के अंदर ऐसे लोग जो है वो लाजमन मुब्तला होते हैं, ठीक है। तो ये सारे तमाशे जो है ना वो बहुत आम है हमारे, खास तौर पर गाँव देहात तो जहाँ पे जहालत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। क्या लिखा है उन्होंने, जी लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं अच्छी तरह रिसेंटली, जिन्होंने एक्सपोज करा अब उनके अच्छे खासे दुश्मन हो गए हैं, उन्होंने बाकायदा सब करके दिखाया कि ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बड़ा देखती हैं इस तरह चीजों में, हम भी तो अपना टाइम जाया करते हैं ना, हमें क्या जरूरत है इन चीजों को देखने की, इस तरह के तो तमाशे भाई भरे हुए हैं। और ये जो मीडिया वाले हैं इनके बारे में, अच्छा किसी ने बताया आपको, चलिए ठीक है, ये इतनी इस हद तक जायज है, ठीक है। तो किसी लोग तो हमें भी आकर के बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। तो बहरहाल, तो यानी ये तो एक मीडिया ने एक्सपोज कर दिया ना, लेकिन मीडिया जैसे कि हम आपको एक जनरल बात करूँ भाई, आपकी बात नहीं आ रहा कि मीडिया के बारे में, जैसे कि आपको उम्मीद है कि बात समझ में आती होगी कि भाई मीडिया जो है ना वो उसके अंदर कोई खैरख्वाही नहीं, वो यानी नेकोकार किस्म के लोग मीडिया पे नहीं बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसा दज्जाली सिस्टम है, मीडिया वाला सिस्टम ऐसा दज्जाली सिस्टम है कि इसमें अगर कोई खैर की बात भी नजर आती है ना, तो उस खैर के पीछे भी शर ही होता है, खैर के पीछे भी शर ही, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि मीडिया के किसी आदमी ने जो है ना वो बुरे पीर साहब को एक्सपोज कर दिया, तो देखो फायदा भी है ना सर इसके अंदर, मीडिया अगर ना होता तो फिर वो साहब कैसे एक्सपोज होते, तो इस वजह से मीडिया के अंदर जो है वो फायदा भी है। तो अब जो है ना वो हम मीडिया में फायदा तलाश करने में लग गए, क्या कि भाई कहाँ फायदा है, चलो जी फायदा तलाश करते हैं मीडिया का, ठीक है। नहीं, ये मीडिया का फायदा भी जो है ना ये भी असल में शर ही होता है। सबसे बड़ा शर्त तो यह है कि वो इंसानों को जो है ना वो बिल्कुल मुंतशिर करके रख देता है, बिल्कुल गाफिल करके रख देता है। मुंतशिर इंसान जो है वो कभी भी फोकस होकर के कोई काम नहीं कर सकता, बिल्कुल गफलत में मुब्तला कर देता है। पहला शर्त तो उस मीडिया का यही है, चाहे वो कितने ही अच्छे काम आपको करके क्यों ना दिखा रहे, बुरे लोगों को एक्सपोज कर रहे हो, करप्ट जो है वो लीडर्स को एक्सपोज कर रहे हो, करप्ट सियासतदानों को एक्सपोज कर रहे हो, है ना, नहीं ये भी कोई खैर नहीं है इनके अंदर, है ये इसकी जड़ ही शर है, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि वो मुंतशर कर देते हैं अपने देखने वालों को, और दूसरे ये होता है कि वो इस तरीके से जो है ना वो दूसरे मकासद भी हासिल कर रहे हो, ठीक है। कि जैसे मिसाल के तौर पर अब उलमाए कराम तो आपको इन चीजों में फर्क करके बताएंगे ना कि भाई इसको एक्सप्लॉइट करने वाले बेशक हैं, लेकिन असल में यही तरीका है तज़किया नफ्स का तरीका, कि पीरे कामिल शेख के साथ जो है वो जुड़ना और जो है वो इस्लाह अपनी करना उनकी रहनुमाई के अंदर, यही तरीका है इस्लाह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मीडिया के अंदर जो है ना वो इस तरीके से बात को प्रेजेंट किया जा रहा होगा कि हर बंदा जो है ना वो जो पहले ही खौफ में मुबतला था इस निजाम से, पीर पीरी मुरीदी के निजाम से उसका खौफ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा बदगुमान हो जाएगा और उसके पास और मवाद आ जाएगा लोगों को जो है ना वो इसके बारे में बदगुमान करने के लिए, और मवाद आ जाएगा उनके हाथ में। ठीक है, तो इस किस्म के जो है ना शोबेबाजियां वो पीर साहब भी कर रहे होते हैं, और मीडिया साहब जो है वो आज के सबसे बड़े पीर असल में मीडिया ही है। आज का सबसे बड़ा पीर जो कि पीर है दज्जाल, आखिर में दज्जाल भी तो बतौर पीर के ही आएगा ना सबका। ठीक है, तो उस दज्जाल के जो सबसे बड़ा हथियार है ना इस दौर में वो यही मीडिया है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी खुशगुमान होने की जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू अम्मी एक ऐसे पीर के पीछे पड़ गए थे जो पैसा नहीं लेते थे मगर कहते थे कि इस्तखारा करके कारोबार में मदद कर देते हैं और तस्बीह देते थे। तो ये लोग तो गलत होते हैं, तो ये लोग पैसे किस वजह से नहीं लेते, ये लोग तो गलत होते हैं, ये लोग पैसे। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आपने लिखा है वो मेरे अगर सही समझ में नहीं आया कि क्या कह रही है, मेरे अब्बू अम्मी एक ऐसे पीर के पीछे पड़ गए थे। ये पीछे पड़ना बाय द वे उर्दू जुबान के अंदर ना उस माने में इस्तेमाल नहीं होता जिस माने में आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, पीछे पड़ने का मतलब होता है कि यानी उसको उसके खिलाफ हो जाना। ठीक है, तो पहली तो उर्दू की इसलाह की जरूरत है कि ये लफ्ज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया ना, ना इंडरस्टैंड कि आप ये कहना नहीं चाह रही हैं। तो खैर, यानी उनके पीछे यानी उनके पीछे जो है ना वो उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब उनकी बुराई की आपने लिखी है कि जो पैसे नहीं लेते थे, ठीक है, चले पैसे नहीं लेना ये एक बज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज है, मगर कहते थे इस्तखारा करके कारोबार में मदद कर देते हैं और तस्बीह देते थे। यानी कुछ तस्बीह देते थे और इस्तखारा, यानी पीर साहब इस्तखारा करते थे कि भाई आपको ये फलाना कारोबार करना है नहीं करना है, या कारोबार के अंदर फलाना डिसीशन लेना है नहीं डिसीशन लेना है। ठीक है, तो वो जो है ना वो यानी जो उनके पास आने वाले लोग हैं तो उनके सवालात या उनके जो क्वेरीज होती थी तो उनका जवाब जो है ना वो इस्तखारा करके दे देते थे। ठीक है, और पैसा भी नहीं लेते थे, और तस्बीह पढ़ने को कि भी आप ये वाली तस्बीह पढ़ने से जो है वो कारोबार के अंदर बरकत हो जाती है और फलानी तस्बीह पढ़ने से जो है वो मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो अब ये आप कह रही हैं कि ये गलत काम है, तो देखें इसके बारे में 100% तो नहीं कहा जा सकता कि वो गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तो वो सिर्फ यही काम कर रहे, पहनने वाली तस्बीह, अच्छा पहनने वाली तस्बीह दे दे, पढ़ने वाली भी तस्बीह नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ, तो फिर तो गड़बड़, तो ये पहनने वाली तस्बीह तो सुन्नत से कहीं साबित नहीं है ना, सहाबा कराम की सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इसमें पहनने वाली तस्बीह का तो, और ये तो जो अहले हक उलमा का उलमा और मशायख होते हैं उनके यहाँ तस्बीह जो है वो अपने गले में डाल देना ये तो बिल्कुल भी इसका कोई रिवाज नहीं। हाँ, तो फिर इससे अंदाजा होता है कि हाँ ये साहब जो थे ना ये ठीक नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी इसके अंदर। तो अब आपके जो तो असल सवाल है वो ये है कि ये लोग पैसे क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो उसका जवाब सुन लीजिए कि भाई आपसे पैसे नहीं लिए है ना। ठीक है, इसका मतलब ये कोई थोड़ी है किसी से भी पैसे नहीं लेते, तो डोंट फॉरगेट कि वो किसी से भी पैसे नहीं ले रहे, ये आपको किसने कहा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि शुरू में पैसे नहीं लेते लेकिन जब बंदा अच्छी तरीके से मुर्गा फंस जाता है और जब कोई उसका काम अटक जाता है तो उस वक्त जो है ना फिर ऐसा मामला आ जाता है जिसके अंदर जो है ना वो कहते हैं भाई अब तो मामला ऐसा है कि इसके लिए तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। अब वो मुरीद साहब भी जो है वो उनको भी समझ में आ जाती है क्या बात कि हाँ भाई जाहिर है पैसे के बगैर तो फलाना वाला काम हो ही नहीं सकता, तो अब वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे किसी और ने आपसे लिखा कि ग्राउंड बनाते हैं उस तरीके से, ठीक है ना, जब एक दफा जो है वो जाल के अंदर आ जाते हैं ना तो उसके बाद फिर वो पैसे जो है वो मांगना भी शुरू कर देते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि वो बेशक ऐसा भी मुमकिन है वो किसी से पैसे नहीं मांगते और ना शुरू में मांगते ना बाद में मांगते, ऐसा भी मुमकिन है। एक तो मैंने बताई ना आपको पहली पहला यानी सूरत ये है कि वो आपसे नहीं मांग रहे लेकिन दूसरों से मांग रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि वो शुरू में नहीं मांग रहे लेकिन जब ग्राउंड बन गया उसके बाद मांग रहे हैं।
ठीक है ना। और तीसरी सूरत ये भी है कि किसी से नहीं मांग रहे, ना बाद में ना ना पहले, लेकिन जब ऐसे लोगों के काम बनने शुरू हो जाते हैं ना, और आपके पास जो है वो भीड़ लग जाती है, ठीक है ना, और बड़े लोग जो है वो खुसूसन अब ऐसे लोगों के पास जहां पर कि ये मसले हल होने नजर आते हैं ना, तो अब जो है ना वो अमीर कबीर लोग तो सबसे ज्यादा आते हैं इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कोठियों वाले। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा मुसीबतों में वही लोग मुब्तला होते हैं। गरीब की जिंदगी में अगर वो शुक्रगुजारी के साथ रह रहा हो ना, उसकी जिंदगी में इतने मसले हो ही नहीं सकते जितने के अमीर कबीर और सरमायादार लोगों की जिंदगी में मसले हो। उनके ऊपर तो मसलों की बारिश हुई भी होती। तो अब वो लोग जो है ना, वो हर वक्त ऐसे किसी पीर की तलाश में रहते हैं कि जिनके पास लोग जा रहे हैं, उनके मसले हल हो रहे हैं। तो अब जब वो लोग आते हैं ना, तो उनके पास तो माल बड़ा होता है, इतना होता है, इतना होता है कि वो अगर उसका 1% भी पीर साहब को दे दे ना, तो पीर साहब के जो है ना वो नस्लें संवर जाए। ठीक है, तो फिर वो लोग जो है ना, वो फिर लौटाते हैं फिर अपने माल को, मतलब 1%, 2%, 5% भी दे करके जो है ना, वो उनका माल खत्म नहीं होता, वो देते हैं पीर साहब को। ठीक है, कुछ जो होते हैं उनके पास इतना पीछे का भी हलाल माल भी होता है लोगों के पास, हलाल माल में से भी 1-2% दे दें तो पीर साहब के वारे न्यारे हो जाएंगे। और हराम माल जिनके पास होता है, तो उनको तो वैसे भी किसी चीज की परवाह नहीं, वो तो यानी बेदरेक जो है वो फिर लुटाते हैं अपने माल को। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, ये पैसे ना मांगना जो है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छाई का, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छाई का। ठीक है, वो उल्लू के जरिए से उल्लू बनाना वाला अभी वाकया पढ़ा था ना आपने हजरत के बयान के अंदर, तो वो भी तो कोई माल नहीं मांग रहे थे, वो तो खाली उल्लू की जो है वो कीमत मांग रहे थे, और बाकायदा उल्लू हवाले भी कर रहे थे वो। अगर आपने नहीं सुना तो किसी और से पूछ लिया। अच्छा, और क्या कह रही है, हुब्बे जाह तो हो सकती है ना। हाँ, हुब्बे जाह पीर साहब के अंदर हुब्बे जाह भी डेफिनेटली, कि भाई वो लोग आ रहे हैं मेरे पास और मेरी जो है वो इतनी वाह वाह हो रही है, और जाहिर है जब ये ज्यादा मकबूल हो जाएंगे तो कल को जो है ना वो इनको फिर क्या कहते हैं इवेंट्स के अंदर भी बुलाया जाए जा सकता है, राइट। इवेंट्स में भी इनको मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाएगा, तो अगर इनके अंदर हुब्बे जा है, यानी अपने अपने आप को पहचानवाने की जो है वो तलब है इनके अंदर, कि लोग मुझे जाने और लोग मुझे जो है वो बड़े मुकामात पर बुलाएं और अच्छा रिस्पेक्ट दें, तो फिर जब वो मकबूल हो जाएंगे लोगों में, तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट भी जो है वो उनको पता चला वो औकाफ का जो है वो उनको सदर बना दिया, राइट। किसी दीनी जो है वो, हमारे यहाँ भी तो यही यही दीन है ना हमारे यहाँ, तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो सारी गवर्नमेंट जो है वो अहले बिदअत ही को सबसे ज्यादा जो है वो प्रमोट करती है, अहले बिदअत लोग तो, ठीक है ना, तो उनको जो है रोयते हिलाल कमेटी का बना देंगे, सरबरा बना देंगे, या कोई यानी जिसमें बड़ा है उनके जो है वो टीवी पर आ रहे हैं और अखबारों में जो है वो उनका चर्चा हो रहा है और लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो फकत हुब्बे जाह भी काफी है, हुब्बे माल जरूरी नहीं है, हुब्बे जाह भी काफी होता है इंसान की भाई के। बहरहाल, तो ये तो बस दो ही पॉइंट्स आज हम पढ़ सके। बस एक मुर्शिद से ताल्लुक के आदाब जो है ना, उसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास खत्म करके अगली क्लास पे आते हैं। अगला जो उनवान है इसके अंदर, वो मुर्शिद से ताल्लुक के आदाब, ठीक है, यानी एथिकेट्स। अपने शेख और मुर्शिद का खूब अदब करें, यानी पहले तो आप सही शेख तलाश करें, जो कि सारी क्राइटेरिया बता दिया, बहुत चीजें समझा दी। अब जब आपने ऐसा शेख यानी हासिल कर लिया है, तलाश कर लिया है, और उनके साथ आपने इस्लाही ताल्लुक या बैत का ताल्लुक बना दिया है, ठीक है, मुर्शिद इज अनदर वर्ड फॉर शेख, मुर्शिद इज अनदर वर्ड फॉर शेख, हाँ, दैट्स यूज फॉर द शेख। मुर्शिद क्या लफ्ज है? अरशदा युरशिदु इरशादन फहुवा मुर्शिद, ठीक है ना। तो ये इसम फाइल है, आप चूंकि ग्रामर वगैरह पढ़ी हुई है, इस वजह से उम्मीद है कि आपको ये इसम फाइल है, ये इरशाद का, इरशाद का मतलब होता है जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, ये इरशाद फरमाए, ठीक है ना, यानी जो नसीहत करता है, चाहे वो मिंबर पे बैठ के नसीहत करे, चाहे वो जो है वो आपके सामने बैठ करके नसीहत करे, चाहे पर्दे के पीछे बैठ करके खवातीन को नसीहत करे, ठीक है ना, तो वो इरशाद, साहिब इरशाद कहते हैं ऐसे लोग, जो कि अवाम की जो है ना वो नसीहतों के जरिए से इस्लाह करते हैं। तो नसीहत करने वाले को मुर्शिद कहा जाता है, मुर्शिदुन। तो यानी मकसद क्या कि वो शेख शेख ही नहीं है जो कि नसीहत ना करे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मुर्शिद होना है उसका, तो यानी मकसद ही मुर्शिद होना। अगर मुर्शिद नहीं है तो फिर वो शेख कहाँ से हो जाए। अच्छा, ये और बात है कि जिस तरह हर चीज को एक्सप्लॉइट किया गया है टर्मिनोलॉजीज को, तो उसी तरीके से ना मुर्शिद के लफ्ज को भी एक्सप्लॉइट किया गया। अब जो है ना वो खास तौर पर जो अहले बिदत तबका है ना वो अपने शेख के लिए मुर्शिद का लफ्ज बहुत इस्तेमाल करता है। हमारे बड़े जानने वाले इस तरह के हैं ना, वो शेख को शेख नहीं कहते, वो शेख को मुर्शिद ही कहते हैं, और उनके लफ्ज के अदायगी से ये इजहार हो जाता है कि वो किस चक्कर में कह रहे हैं अपने शेख को मुर्शिद, ठीक है। लेकिन उनके शेख साहब जो है ना वो शरीयत और सुन्नत की तरफ उनको कोई नहीं, बस वो मुर्शिद है, बैत कर लिया जी हमने उनके साथ जो है वो ताल्लुक है, काम चल रहा है, बस मजे हो रहे हैं। बहरहाल, तो शेख और मुर्शिद का खूब अदब करें। अदब भी जो है ना वो सीखना पड़ता है कि अदब होता क्या है। हमारे कल्चर के अंदर अदब का मतलब सिर्फ यही है झुक करके मिलना, ठीक है ना, या आप जनाब करना, या जो है ना वो तमीज से जो है वो बैठ जाना और आवाज को जो है वो पस्त रखना। भाई ये भी अदब है, और ये है अदब, ये अदब का हिस्सा ही है सारी चीज, ठीक है ना। और ये हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से और सहाबा कराम की सुन्नत से जो है वो ये आदाब मिलते हैं। लेकिन इससे बढ़ करके जो अदब है वो ये है कि भाई उनकी बात को तवज्जो से सुना जाए, समझने की कोशिश की जाए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए इखलास के साथ, ठीक है। और उनके साथ जो है ना वो खुसूसन जो है ना वो धोखे और झूठ वाला मामला ना किया जाए, ठीक है ना। ये है असल अदब, और बाकी आदाब जो है वो सेकेंडरी सेकेंडरी। अगर आपने प्राइमरी अदब ही नहीं किया तो फिर सेकेंडरी अदब जो आप जितना भी करते रहे उसको कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो असल अदब जो है ना वो तो ये है कि जी बात को समझने की कोशिश की जाए, तवज्जो के साथ सुना जाए और उसके ऊपर अमल की जाए, वो इखलास के साथ कोशिश की जाए। अब हम कोशिश ही करना कह रहे हैं ना भाई, करना ना करना वो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होता है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना। और बेअदबी से बचना, जिक्र अस्कार के जो तरीके वो बताए उनकी पाबंदी करें, ठीक है। अब उन्होंने अगर आपको कहा कि 15 मिनट का मुराकबा कर लिया करें, ठीक है, और जो है वो 100 तस्बीहात जो है वो सुबह और शाम को कर लिया करें तो उसकी पाबंदी की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहा तो उसको बता दें कि जी मैं अभी नहीं कर पा रहा, वो आपको कह देंगे कि आप चले 15 मिनट नहीं कर पा रहे, आप 10 मिनट के लिए मुराकबा करें। आप जो है वो 100 तस्बीहात जो है वो रोजाना सुबह को नहीं कर पा रहे, आप 50 तस्बीहात कर, चले आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें खाली, ठीक है। लेकिन जितना वो बता रहे हैं तो उनकी पाबंदी करने की कोशिश करें। अपने शेख के बारे में ये एतकाद रखे कि इस्लाही ताल्लुक रखने में मुझे जितना फायदा उनसे पहुंच सकता है उतना इस जमाने की किसी और बुजुर्ग से नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। ये गुमान वाला जो मामला है, अब इसके अंदर काफी सारी तफसील की जा सकती है, तो वो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे वाली क्लास में। चंद मिनटों की ब्रेक के बाद ना मिसाल